आप आज से कुछ दिन तक प्रत्येक समय में कुछ प्रकाश डाली। सन 1947 में दीक्षा लेने के बाद अपने गुरुदेव पूर्वाचार्य भक्ति प्रज्ञान केशव स्वामी महाराज से आप 5 साल तक अपने गुरुदेव के साथ पूरे भारत में प्रचार किया। उसके बाद नया मंदिर वहां पे मथुरा में जो उन्होंने बनाया वहां पे रह गए। उन्होंने बहुत सालों तक वहां पे बहुत सी भक्ति योग के बारे में किताबें ग्रंथ प्रचार बहुत समय तक उन्होंने वहां बिताया। उसके बाद उन्होंने वहां पे रहकर अपने शिष्य गुरु पूज्यमान शिला भक्तिविनायक स्वामी महाराज की आज्ञा से उन्होंने पूरे विश्व भर में ट्रैवल करना शुरू किया। और आज का उसका रिजल्ट ये है कि पूरे विश्व में इन्होंने 20 मार्च से ज्यादा ये अपना प्रचार कर चुके हैं और आज हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज ये यहाँ पर आए हैं। इसलिए मैं बुले को आपके बुले को मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि वे हमारे बीच में कुछ भक्तियों के बारे में भक्तियों के संबंध में कुछ प्रकाश
ग्रहणतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि नवजीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम शरणं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, सब प्रथम मैं अपने परमाराध्यतम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में भी श्रद्धा दंडवत पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूं। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, हम लोग भारतवर्ष में वृंदावन मथुरा से आए हैं और भारतीय सनातन धर्म भारतीय ज्ञान और संस्कृति का विश्व में सर्वत्र प्रचार करते हैं। हम लोगों ने करीब करीब 24 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है और सब देशों के लोग इसको सुनते हैं और भारतीय विचारधारा को मान करके इसको ग्रहण करते हैं और अपने को सुखी समझते हैं। वो गोमांस खाने वाले लोग अब सब छोड़ करके मद्यपान बीड़ी सिगरेट धूम्रपान इत्यादि सब छोड़कर तिलक माला रखते हैं, सिर पर चोटी रखते हैं, महिलाएं भारतीय कपड़े पहनती हैं, किंतु हम लोग भारतवासी होकर के भी कुछ बहक रहे हैं। अब अंग्रेजी फैशन इत्यादि भी धारण करने लगे हैं। सावधान रहना है, आप जहां भी जिस देश में रहें भारतीय संस्कृति पर दृढ़ रहेंगे, उसके विचारों को मान करके चलेंगे। गीता इत्यादि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जगत में आते हैं। वह एक धर्म की प्रतिष्ठा है, वह धर्म का वही उन्हीं से निकलता है और फिर जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सिजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवान्। युग युग में जब असुर लोग बढ़ जाते हैं, साधुओं पर अत्याचार करने लगते हैं और सनातन धर्म की मर्यादा को तोड़ने लगते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अथवा राम नृसिंह इत्यादि रूप में और कभी अपने परिकरों को आचार्य के रूप में भेज करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। जरा अच्छी तरह से समझना, सनातन धर्म किसे कहते हैं? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब सनातन धर्म नहीं है। किंतु हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म के बहुत से अंग पाले जाते हैं, इसलिए हिंदू धर्म को भी सनातन धर्म कहा जा सकता है, किंतु यथार्थतः नहीं। अभी कोई आज हिंदू है, कल ईसाई हो गया, धर्म बदल गया। कोई ईसाई है, मुसलमान हो गया, धर्म बदल गया। अभी हम लोग हिंदू हैं, इनमें से कोई क्रिश्चियनिटी स्वीकार कर लिया तो क्रिश्चियन हो गया, धर्म बदल गया। इसलिए ये सनातन नित्य नहीं है। संसार में हम देखते हैं कि ये शरीर हम नहीं है, ये हाड़ मांस पैखाना पेशाब टट्टी की एक थैली है। किस इसके भीतर में आत्मा और परमात्मा रहते हैं, हम लोग भूल गए हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। इसमें से परमात्मा नित्य है, सनातन है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद भोग प्रजौ कुसाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। वो सनातन है, परम ब्रह्म है, उससे बढ़कर के, कृष्ण से बढ़कर के जगत में कोई परतत्व नहीं है। इसमें राम के रूप में तो कृष्ण आते हैं, इसलिए तत्त्वतः राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। किंतु कुछ लोग दुर्गा देवी को, कुछ लोग गणेश को, कुछ लोग शंकर को, कुछ लोग ब्रह्मा जी को, कुछ लोग कार्तिकेय को, कोई लोग हनुमान जी को, कोई शंकर जी को भगवान समझते हैं, किंतु ये भगवान नहीं है। भगवान के दास हैं। शंकर जी राम की सेवा करने के लिए हनुमान के रूप में आते हैं और स्वयं गोपी बन करके वृंदावन में आते हैं, इसलिए सब समय भगवान की सेवा करते हैं। और देखो, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण इत्यादि शंकर के उपासक थे, दुर्गा जी के भी उपासक थे, किंतु जब रावण ने सीता जी को चोरी की तो रामचंद्र जी ने उसके वंश को किसी को नहीं छोड़ा, सबको ध्वंस कर दिया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती कोई वंश में बत्ती देने के लिए भी नहीं बचा। हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष ब्रह्मा जी के उपासक थे, किंतु भगवान ने उनको मारा नृसिंह रूप धर के। उन लोगों ने ब्रह्मा जी ने रक्षा नहीं की। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि कोई कृष्ण का भक्त है, भगवान का भक्त है, तो शंकर जी उस व्यक्ति का बड़ा आदर करते हैं, वो ध्वंस नहीं हो सकता। इसलिए यह समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी या हनुमान जी हैं, भगवान के दास हैं, इसलिए पूज्य हैं। शंकर जी भगवान के सेवक हैं, इसलिए पूज्य हैं। इसलिए स्वतंत्र रूप में ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, भगवान की कृपा से ही कुछ देते हैं, अन्यथा दे नहीं सकते। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, भगवान यदि प्रसन्न हो गए तो जितने देवता है सभी प्रसन्न हो जाएंगे, और कृष्ण नहीं प्रसन्न हुए कोई देवता हमारा कुछ नहीं बना सकते न बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इस तत्व को समझना चाहिए, कृष्ण ही परतत्व हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए कृष्ण नित्य है सनातन है, भगवान नित्य है सनातन है। और कहते हैं नित्यो नित्यानाम, हम लोगों की जीवात्मा नित्य है और इन सब का नित्य जो है इनके परम नित्य सनातन कृष्ण है, भगवान है। जीव के संबंध में ऐसा है बतलाया गया, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव इसके अंदर में है वो भगवान का अंश है और सनातन है, कभी नहीं भगवान होगा, जीव ही रहेगा, कभी बद्ध होता है कभी मुक्त हो जाएगा, किंतु सनातन है। और भी अकामो सर्व कामो नहीं, स्थानु रचलो अयम सनातन, जीव सनातन। इसलिए जीव का भगवान के प्रति जो धर्म भगवत सेवा है यही सनातन धर्म है, और बाकी सब कोई सनातन है। फिर से समझो, भगवान परम नित्य है, जीव ही नित्य और सनातन है। उसमें जीव जब भगवान की सेवा करता है यही सेवा की वृत्ति ही सनातन धर्म है, और सब कोई सनातन धर्म नहीं है। इसी को भागवत में कहा गया, सवई पुंसं परो धर्मो जतो भक्ति अदुख। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं, मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, इंद्रियों से अतीत, तन मन वचन से अतीत भगवान कृष्ण की, तन मन वचन से गुरु के अनुगत्य में तैलवा धारावत अविच्छिन्न गति से जो भक्ति होती है, सेवा होती है, चेष्टा होती है, उसको परम धर्म कहते हैं। वह उसमें भक्ति के अतिरिक्त और कोई कामना सांसारिक नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो सकाम भक्ति हो जाए। इसलिए ज्ञान और कर्म से भक्ति होती है ऐसा भी नहीं, इसलिए इस निर्मल भक्ति को उत्तमा भक्ति कहते हैं। रूप गोस्वामी ने भी ऐसे ही ठीक व्याख्या की है, अन्ना अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मात् ध्यानापितम् अनुकुल्येन कृष्णानुशीलनम् भक्ति। वैष्णव के अनुगत्य में, गुरु के अनुगत्य में, तन से, मन से, वचन से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो चेष्टा होती है उसको कहते हैं उत्तमा भक्ति। अब ये भक्ति भी दो प्रकार की है, एक साधन भक्ति और एक सिद्ध भक्ति। साधन भक्ति और भाव भक्ति ये साधन है, प्रेमा भक्ति सिद्धा है। प्रेम ये साधन सिद्ध है। और भी भक्ति का एक प्रकार है स्वरूप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति और
आरोप सिद्धा
भक्ति। इसको समझो, भगवान का श्रवण, नाम रूप गुण लीला का कीर्तन या श्रवण करना, ये स्वरूप सिद्धा भक्ति है। जब भक्ति के साथ में कुछ गुण होते हैं उन गुणों को भी भक्ति कहते हैं, जैसे सहिष्णुता, कृपालुता, इस प्रकार से 26 गुण हैं। इन गुणों को भी भक्ति कहते हैं यदि भक्ति के साथ में रहे, और भक्ति साथ न रहे ये गुण बेकार के हैं। इसको कहते हैं संग सिद्धा। और आरोप कहते हैं जैसे कोई सामाजिक उपकार की बात है, बगीचा लाया, लगाया, कुआं खुदवाया लोगों के उपकार के लिए, बगीचे से ठाकुर जी का फूल जाएगा भगवान के लिए, आरोप करते हैं कि यह भक्ति है। कुआं खोदवाना, तालाब बनाना, किसी का उपकार कर देना, ये भक्ति का आरोप है, भक्ति नहीं। जैसे ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया और 6 महीने में ही भगवान को प्राप्त कर दिया, किंतु कुछ कामना के कारण उनकी भक्ति बिगड़ गई, स्वरूप सिद्धा नहीं हो सकी, उसमें सकाम हो गई, कर्म मिश्रा भक्ति हो गई। इसलिए जब शुद्ध भक्ति होती है, प्रेम की अवस्था में भक्ति आती है, तो वही बढ़कर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मोहन, मादन की स्थिति में पहुंच जाती है। यह मादन की जो स्थिति है केवल मात्र राधिका में है, ऐसी राधिका की सेवा को सनातन धर्म कहते हैं। राधिका जी का भाव सर्वोत्तम भाव है, ऐसी जिनके अंदर में कृष्ण की सेवा करने की प्रवृत्ति है, ऐसे राधिका जी की सेवा करना, उनकी किंकरी होना, दासी बनना, इससे बढ़कर के जीवों के लिए और कुछ नहीं है। जीवों का यही तक अधिकार है। ललिता विशाखा जैसे कि सखी हो जाना, ये उनके लिए नहीं है। इसलिए सनातन धर्म क्या हुआ, राधा जी की सेवा, और इसी को तत्तद इच्छा भावमयी अथवा उल्लासमयी रति कहलाती है। उनकी रति को, स्थाई भाव को उल्लास रति कहते हैं। जैसे माता यशोदा जी का भाव, स्थाई भाव क्या है, वात्सल्य है। नंद बाबा का वात्सल्य है, गोपियों का मधुर भाव। इन लोगों का क्या है, जीव जो जाएंगे अंतिम अवस्था तक राधा जी की दासी होंगे, और उनके भाव का नाम लास रहती है। यू कैन टेल इन ब्रीफ, नहीं सब लोग हिंदी समझने वाले हैं। ओके, संक्षेप में ना बोल दो।
to try to collect those qualities separate from devotion, this is called samrasya bhakti. And for all those types of devotion we reject, and we only try to accept sarupasya bhakti. We listen so much, but there's an extraordinary.
जब यही सनातन धर्म इस सनातन धर्म को असुर लोग उनकी मर्यादा को नष्ट करने लगते हैं, जैसे रावण और ये दैत्य दानव सनातन धर्म को नष्ट करने लगे, यहां तक कि भगवान राम की सीता को हरण कर ले गया, केवल सीता जी का नहीं कितने राजकुमारियों का उसने हरण किया, उसका कोई आदि अंत नहीं था। भक्तों पर अत्याचार करता था। जो विश्वामित्र इत्यादि ऋषि थे वो यज्ञ करते थे तो यज्ञ नहीं करने देते थे, उन ऋषियों को खा जाते थे। जब ऐसी स्थिति होती है तो भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं अथवा वही समय के अनुसार में राम, निशिंघ, कल्कि, वामन इत्यादि के रूपों में आते हैं और असुरों का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा करते हैं पुनः। इसलिए भगवान रामचंद्र जी इसी धर्म की मर्यादा को रखने के लिए रावण, कुंभकर्ण, खर, दूषण ऐसे जो दुष्ट थे और भी बहुत से थे, बाली, इन सबको मार करके धर्म की रक्षा की। इन्हीं कारणों से आते हैं भगवान। एक समय प्राचीन काल में नारद जी तपस्या कर रहे थे एकांत में। उनकी तपस्या देख करके इंद्र ने कामदेव को, अस्पराओं को, बसंत ऋतु को और सब जो कामदेव के जो अनुचर हैं सब भेजा, इसकी तपस्या को नष्ट कर दो। अस्पराएं गई, नित्य करने गई, अर्धनग्न हो करके सुंदर हवा बह रही थी, अकेले नारद जी और इतनी अस्पराएं, किंतु नारद जी का चित्त डगा नहीं तनिक भी, भगवान का स्मरण करते रहे। तब कामदेव ने, अस्पराओं ने उनके चरणों में गिर करके क्षमा मांगी, चले गए और नारद जी को कुछ अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी कामदेव को नहीं जीत सके, शंकर जी कामदेव को नहीं जीत सके, विश्वामित्र इत्यादि ऋषि तपस्या में कामदेव को नहीं जीत सके और मैंने जीत लिया। गए ब्रह्मा जी के पास में, पिताजी कामदेव गया किंतु आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया। कहा देखो, हमसे कहना और किसी से, शंकर जी से और भगवान से मत कहना। नारद जी उनकी बात न मान करके अपने गुरु शंकर जी के पास में पहुंचे। बोले जे महादेव जी, आपकी कृपा से आज मैंने कामदेव को और अस्पराओं को भी जीत लिया, बहुत अच्छा किया, किंतु देखो नारायण के पास में खबरदार मत कहना। तुम वो माने नहीं, चले गए वैकुंठ लोक में और भगवान नारायण से बोले, प्रभो आपकी इस दास के ऊपर में बड़ी कृपा है, आज कामदेव अस्पराओं को लेकर हमारे पास में आया किंतु आपकी कृपा से मैं अटल अचल रहा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुमने तो ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सका पृथ्वी पर। ठीक, उनको प्रणाम करके चले। भगवान ने देखा ये, इसको तो अभिमान हो गया, तो ये गड़बड़ है। भक्ति से, इससे अभिमान होने से भक्ति से च्युत होना पड़ता है। उन्होंने कहा जी ठीक है, इसकी चिकित्सा करना है, ये रोगी हो गया है। उन्होंने साथ ही साथ में एक सुंदर नगरी तैयारी की, उसमें एक सुंदर राजा, प्रभावशाली राजा बनाया और उसकी एक लड़की बनाया जो युवावस्था में थी, किशोरी अवस्था में अपूर्व सुंदरी थी। जब वहां पर गए तो राजा इनको देख करके बोले, महाराज आज बड़ी कृपा हुई है, आप आए हैं, हमको एक लड़की है, उसकी हाथ की रेखा दो देखिए और इसका भविष्यत कैसे क्या होगा आप बतलाइए। नारद जी गए, उसको ऊपर से नीचे देखा और जब हाथ देखा तो आश्चर्य से चकित हो गए। ये तो भगवती का अवतार है, जिसके पास में रहेगी उसको रिद्धि सिद्धि धन संपदा प्रतिष्ठा सब कुछ मिल जाएगा।
इसके पति को कोई हरा नहीं सकते हैं। इसके पति को कभी कोई हरा नहीं सकते हैं।
और इसका जो पति होगा उसको कोई किसी भी रूप में हरा नहीं सकेगा। देखा उसका सौंदर्य, मोहित हो गए, अस्पराओं से नहीं मोहित हुए थे, इसको देख करके मोहित हो गए। सोचे इस लड़की से किसी प्रकार मेरी शादी हो जाए बहुत अच्छा हो। राजा से बोले, इस लड़की की शादी हमसे कर दोगे? राजा ने कहा, नारद जी हमने इसका स्वयंवर रचा है और इसके हाथ में जयमाला रहेगी, जिसके गले में देगी उसी से शादी होगी, आप पधारिए उसी में स्वयंवर में और यदि आपके गले में माला दे देगी तो आप ही के साथ में शादी होगी। यह सुन करके नारद जी ने विचार किया, हमने आज से जन्म से नारायण की सेवा की है, उनका भजन किया है, उनसे कुछ मांगा नहीं, चले बैकुंठ में और उनसे मांगेगी एक दिन के लिए अपना रूप दे दीजिए मुझे, जब वो दे देंगे तो वो रूप दे करके ये जरूर बनमाला हमारे गले में दे देगी। ठीक, सोच विचार कर बैकुंठ में गए, बोले जय नारद क्या समाचार है? समाचार बहुत अच्छा है, आपकी हमने जन्म से ही सेवा की है, आराधना की है, आपसे कुछ मांगा नहीं, इस बार कुछ आपसे मांगता हूं, आप एक दिन के लिए अपना ये जो सुंदर रूप है मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जैसा कल्याण होगा तुम्हारा वैसा ही करूंगा, जाओ। नारद जी ने समझा कि भगवान ने अपना रूप दे दिया, तुम्हारा कल्याण हो का अर्थ माया में मुक्त होने से समझ नहीं सके। उस अवार राजपुरी में पहुंचे, देखा स्वयंवर हो रहा है, देश देश के बड़े युवक राजा बड़े सुंदर सुंदर आए हैं और वो राजकुमारी हाथ में जयमाला लेकर के घूम रही है। ब्रह्मा जी को देखा, अरे इसका तो कुछ दिनों में फिर यह मर ही जाएगा, शंकर ये तो उसका अघोर रूप है, नहीं सबको रिजेक्ट करते करने लगी, किसी के गला में माला डाल नहीं रही है, घूम रही है। और नारद जी ने समझा कि तो भगवान ने अपना रूप दे दिया है, वो आगे जाकर के जिधर में वो जाती है उधर ही में जाते हैं और गला लंबा करते हैं कि हमको दे दे। इस प्रकार से वो घूमती रही और ये नारद जी घूमते रहे चारों तरफ में, किंतु माला तो दे नहीं रही। शंकर के दो दूत थे, वो देख करके कह रहे हैं आ कैसा सुंदर रूप है, वाह 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 अद्भुत रूप है। हंसी उड़ाते थे, किंतु नारद जी समझते थे ये ठीक कह रहे हैं, ये हमारा ऐसा। अंत में विष्णु आए, नारायण गरुड़ के कंधे पर चढ़ करके, और राजकुमारी ने वो माला नारायण के गले में दी और नारायण उसको अपने गरुड़ पर बैठा करके वैकुंठ लोक लेकर के चले गए। नारद जी ने कहा ये क्या, नारायण से कहा था जी अपना रूप दो और ये इसने हमको पति के रूप में वर्ण नहीं किया, हमारे गले में जयमाला नहीं दी। तो वो हंसते हुए बोले शिव के गण जरा पानी में या दर्पण में अपना रूप तो देखिए कैसा सुंदर रूप है। तो उन्होंने पानी में जाकर के देखा, ये तो हमारा रूप तो बंदर जैसा हो गया है, काला जैसा लंगूर होता है ना, काला मुख हो जाता है, ऐसा मुख देखा। उनको बड़ा क्रोध हुआ, हमारे सामने विष्णु आया, नारायण आए और उसको लेकर के बैकुंठ चले गए और मुझे बंदर का रूप दे दिया। अरे बिगड़े, क्रोधित हुए और शंकर के दूतों को कहा जाओ तुम राक्षस हो जाओ। वही रावण और कुंभकर्ण हुए और फिर गोलोक वहां बैकुंठ में गए। नारायण को कहा जी आपको तनिक भी विचार नहीं है, इतनी आराधना करने पर भी आपसे रूप मांगा वो भी थोड़े दिन के लिए, और आपने मुझको काले बंदर का मुख दे दिया। जाइए, जिस प्रकार से मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, इधर उधर भ्रमण कर रहा हूं, बड़ा दुखी हूं, आप भी ऐसे उसी राजकुमारी के लिए आप दुखी होंगे, भटकेंगे बन बन में, रोएंगे। तो वो नारायण कौन हुए, वही राम हुए। और वो जो राजकुमारी है वो लक्ष्मी जी है, वो सीता जी हुई हैं। और दोनों शिव के गण हुए, कुंभकर्ण और रावण। इस प्रकार से जब ये रावण और कुंभकर्ण इत्यादि राक्षस उत्पात करने लगे, ऋषियों को खाने लगे, सीता जी को चोरी कर दिया, तो इस कारण से रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ, अवतार उन्होंने लिया धर्म की मर्यादा रखने के लिए, इसलिए इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। और जब मर्यादा स्थापित हो जाती है तब इसके बाद में प्रेम आरंभ होता है। जहां पर मर्यादा हो जाएगी समाप्त, उसके बाद में कृष्ण वाला जो प्रेम है, गोपियों का प्रेम है, तब वहां से आरंभ होगा, इसके पहले नहीं। तब वही कृष्ण या राम ही कृष्ण के रूप में प्रेम मर्यादा पुरुष कहलाते हैं। इस तरह से राम के अवतार के बहुत से कारण हैं, हमने दो एक कारण केवल कहा। फिर हम कल से, आज यहीं पर हम कथा का विश्राम देंगे और कल से भगवान रामचंद्र जी के चरित्र इत्यादि का वर्णन करूंगा। ये ऐसा रामचंद्र जी का की लीला है कि इसको सुनने से आंसू आए बिना रह नहीं सकते, करुण रस उससे बरसता है। कठोर हृदय का आदमी भी द्रवित होकर के रोने लगता है। राम लक्ष्मण का वनवास, सीता का चोरी, सीता को सारे जन्म के लिए छोड़ देना, बड़ी करुण गाथाएं हैं। इसका हम कल से आरंभ करेंगे, पर आज यहीं तक रहे।
So tomorrow's class, 4 to 11, because Sunday. So we heard how enemy demons like Ravan, Kumbhakarna, etc. comes up, also worship Mahadev, Lord Shankar, accepting him as Bhagawan, and neglecting Bhagawan himself. But when Ram killed the demons, even one worse than the dynasty of Ravan, he did not spare. So there are many reasons for the cause of the descent of Lord Ram. Especially on Lord Ram's Mahajana Purushottam. So at that time the demons were very powerful and they were going around causing so many disturbances to the devotees, even eating them and killing them. At that time the devotees prayed in great distress, and Lord Krishna came in the form of Bhagavan Ram to re-establish Mahajana, means religious principles. Then when that story is nicely told, then Narada Muni, he was performing austerities, and Maya, Cupid, Kamadev, he tried to conquer Narada Muni, but he could not conquer Narada. Even he sent Apsaras, heavenly ladies, he sent the spring month, many things he sent, but Narada's mind was very fixed on the remembrance of the Lord. Therefore, finally, Indra and all Kamadev and everyone came and did pranam to Narada. Then Narada developed some type of false ego. Oh, I have conquered Kamadev. Even Shankar could not do. Even Brahma could not do, but I have done. Then he went to his father Brahmaji and said, I have conquered sexual desire. Then Brahmaji smiled and said, very nice, but what did you do? Don't tell Mahadev. He said, why I'll not tell Mahadev, he's my guru. So he went immediately to Mahadev. So I have conquered sexual attraction. Then Mahadev laughed and said, very nice, but whatever you do, don't tell Narayan. Why I'll not tell Narayan? He went and told Narayan, I have conquered sexual attraction. There was sometimes even that type of false ego can be an obstacle to devotion. Therefore, the Lord is a very expert physician. Therefore, he gave a wonderful medicine to Narayan. In 1 second, Lord Narayan created a whole city with a very powerful king, with a very powerful daughter. So when Narada came back to this world, he saw that city, he came, he met the king, and he saw that daughter, very, very attractive. The king said, can you read the palm of my daughter and tell her what her picture will be? And Narada, not just reading the palm, but reading her from top to bottom. And they thought, wow, look at the symptoms on her hand. If I can marry her, then that husband will never be defeated, he'll have a long life, all types of mystic opulences, all types of mystic powers will come to him, he'll be very wealthy. So he asked the king, I want to marry your daughter. The king said, my daughter will choose her own husband, that is called the Swayambhar. So now he began to perspire, he thought, right, I'm not so good looking, many years doing austerities. So he went to Lord Narayan and said, Lord Narayan, many years I'm serving you since birth, I never asked you for anything. So you can just lend me your face for a few minutes, one day. Because Lord Narayan is the most attractive person. If I can look like you, then I'll win the competition. Then Lord Narayan said, oh Narada, I'll give you what's good for you. I'll give you the face of Hari. So Narada forgot Hari also means monkey. So Narada came back down for the competition. And the lady was looking. All the boys would come there, very powerful princesses. Even demigods had come to try to win her hand. But the lady, she was looking, everyone has some fault. Brahmaji, he'll also die one day. Shankar, his form is a little strange, and therefore she neglected. Everyone had some fault. Then Narada, he thought, I have the face of Narayan. So everywhere they go went, Narada, when he was trying to put out his name, or save him the trouble of doing this, therefore he didn't like that. So everyone saw this fellow with a monkey face falling everywhere, and they were laughing. Especially two associates of Lord Shiva. Oh, Narada, you are very beautiful, most attractive. They are joking like that. So So finally, the girl was not giving the gal to anyone. The Lord Narayan came down from Vaikuntha and met the girl. So this person has not fallen at all. He is completely perfect. She galloped with him. Lord Narayan took her hand and went to Vaikuntha. And so now I was completely in shock. Me and him have the same face. What's going on? Then the associates of Lord Shiva said, maybe you should look at yourself, your reflection in the pond, in some water. Then now I looked, oh my God, here, like monkey face, black in the middle, some white here. And now I was very angry. And he cursed those two followers of Shankar. A girl should become demons, so they become rather than Kumbhakarna in their next life. Then Narada was running behind Lord Narayan shouting, you cheated me, you cheated me. Therefore, I curse you. Just like you have stolen, just like I am weeping for that girl who I love. And I was moving everywhere looking for her. In the same way, I curse you. You also weep in separation from your wife. Then Lord Narayan smiled, oh Narada, I take your curse. That is for the performance of my pastimes. So, in order to fulfill, this is one of the reasons of the descent of Lord Ram. And also Narada cursed, you also have to take help of monkeys and to get your wife back. So Narada, that is one of the reasons of the descent of Lord Ram. Therefore, Lord Ram came at a time of great disturbance. And what did he do? He established Mahajana. Mahajana means rules and regulations, religious principles. And after establishing religious principles, Krishna came in the form of Lord Ram to establish religious principles. But then after religious principles were established, is that enough? No. Therefore, after the incarnation of Ram, then Krishna himself, the original Supreme Lord, came to establish Prem. Therefore, Lord Ram is Mahajana Purushottam, but Lord Krishna is called Prem Purushottam. Therefore, we'll hear some pastimes of Ram tomorrow at 10:15. Guru Maharaj said the pastimes of Ram are so karunamoy, pathetic, so sad and wonderful. Even a person who has a heart of a stone, when they hear the pastimes of Ram in separation from Sita, Sita being stolen, the marriage of Ram and Sita, then even a person who has no heart, or their heart is made of a piece of rock, even such a person will weep. Therefore, we are very likely to hear all these things tomorrow. Please don't be late. Please don't leave after Gurudev leaves. There will be aarti and also Mahaprasad. Go, Premanandi.
जब नारद जी ने भगवान को नारायण को अभिशाप दे दिया तो भगवान ने दया करके अपनी माया हटा ली और माया के हटाने से समझ गए अरे हमको अभिमान हो गया इस अभिमान को दूर करने के लिए जब मैं भी एक स्त्री के प्रति आसक्त हो गया हमारे अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसी मेरी चिकित्सा की अब समझ गया अब वो भगवान नारायण के चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे किंतु नारायण जी ने कहा जैसे भी हो तुमने हमको अभी साथ दिया है मैं उसका पालन करूंगा मैं राम के रूप में जाऊंगा और इस प्रकार से सीता जी के रूप में लक्ष्मी जी जाएंगी और वहां पर लीलाएं हम करेंगे तो इस तरह से उन्होंने नारद जी का भी गर्व दूर कर मास्टर साहब जय जय राधा रमण हरि बोल
In order to remove my false ego, the Lord has performed all of this. Then Lord Ryan said, don't worry now, I accept your curse. And he appeared in the form of Ram to taste all these things. Lord,